लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए संदेश में जीवन रूपी धन का विनिमय करने का आह्वान किया। संत पापा लियो ने रविवारीय देवदूत प्रार्थना हेतु संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù ci invita a riflettere su come investire il tesoro della nostra vita.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज का सुसमाचार हमें इस बात पर चिंतन करने को निमंत्रण देता है कि हम जीवन रूपी धन का विनिमय अपने में कैसे करें। यह हमें कहता है, जो कुछ अपने पास है उसे बेचो और दान कर दो। इस भांति यह हमारा आह्वान ईश्वर से मिले उपहारों को अपने लिए रखने को नहीं, बल्कि उन्हें उदारता में दूसरों की भलाई हेतु देने को कहता है, विशेषकर उनके लिए जिन्हें उनकी हमसे अधिक जरूरत है। यह हमें अपने भौतिक जीवन को केवल बांटने को नहीं कहता है, बल्कि यह हमें अपनी योग्यताओं, प्रेम, अपना समय, अपनी सहानुभूति को दूसरों के संग साझा करने को कहता है। संक्षेप में, वे सारी चीजें जिनसे हमारा जीवन बना है, ईश्वर की योजना में जीवन एक अद्वितीय, एक मूल्यवान सजीव संपत्ति है, जो अपने में विकसित होने हेतु बोए जाने और विनिमय किए जाने की मांग करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह मुरझा जाता और अपने मूल्य को खो देता है, या यह दूसरों के द्वारा जैसे चोरों के द्वारा लूट लिया जाता है और उसका उपयोग उपभोक्ता मात्र एक चीज के रूप में किया जाता है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर का उपहार, जो हम सभी हैं, अपने में इस भांति नष्ट होने के लिए नहीं है। हमें एक दूसरे का साथ, स्वतंत्रता और संबंधों की जरूरत है, जिससे हम अपने को व्यक्त करते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकें।
Ha bisogno dell'amore che solo trasforma e nobilita ogni aspetto della nostra esistenza, rendendoci sempre più simili a Dio.
हमें प्रेम की जरूरत है, जो हम में परिवर्तन लाता और सभी रूपों में हमारे जीवन के अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाता है, जहां हम अपने को अधिक से अधिक ईश्वर के रूप में बनता पाते हैं। यीशु के ये वचन यरूशलेम के मार्ग में, जहां वे अपने को क्रूस में हमारी मुक्ति के लिए अर्पित करते हैं, कोई संयोग से नहीं आता है। करुणा के कार्यों को हम सबसे सुरक्षित और सबसे लाभप्रद बैंक के रूप में पाते हैं, जहां हम अपने जीवन के अस्तित्व की निधि को जमा करते हैं, क्योंकि वहां, जैसे कि सुसमाचार हमें बतलाता है, यहां तक कि दो अधेलों में भी एक गरीब विधवा अपने में दुनिया की सबसे धनी व्यक्ति बनती है। संत अगुस्टिन अपनी प्रस्तावना में कहते हैं, कोई व्यक्ति एक पाउंड कासे से एक पाउंड चांदी बनाता या एक पाउंड चांदी से एक पाउंड सोना बनाता तो वह अपने में संतुष्ट होता है, लेकिन जो कुछ वह देता है वास्तव में उसे कुछ अलग मिलता है, सोना या चांदी नहीं बल्कि अनंत जीवन। और वे इसका कारण बतलाते हैं, जो चीज दी जाती है वह बदल जाएगी क्योंकि देने वाला हम में परिवर्तन लाता है। संत अगस्टिन के विचारों को स्पष्ट करते हुए संत पापा लियो ने कहा, इसका अर्थ समझने के लिए हम एक माता के बारे में विचार कर सकते हैं जो अपने बच्चों को गले लगाती है। क्या वह दुनिया की सबसे सुंदर और धनी माता नहीं है? या दो सगाई शुदा जोड़े जब एक साथ होते हैं तो क्या उन्हें एक राजा और रानी होने जैसा एहसास नहीं होता है? इसके और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं।
Perciò, in famiglia, in parrocchia, a scuola e nei luoghi di lavoro, ovunque siamo, cerchiamo di non perdere nessuna occasione per amare.
इसलिए आइए हम अपने परिवारों में, अपने पल्ली में, विद्यालय में और अपने कार्यस्थलों पर, हम जहां कहीं भी हों, हम प्रेमपूर्ण कार्य करने हेतु कोई भी अवसर न खोएं। यही वह सतर्कता है जिसकी मांग यीशु हम सबों से करते हैं। हम एक दूसरे के प्रति सचेत हों, अपनी चेतना और संवेदनशीलता को दूसरों के लिए प्रकट करें, जैसे कि ईश्वर हमारे संग हर पल पेश आते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि हम इस इच्छा और इस प्रतिबद्धता को माता मरियम को सौंप दें। वह भोर का तारा है हमें इस दुनिया में जो इतने सारे विभाजनों से चिन्हित है, दया और शांति के प्रहरी बनने में मदद करें, जैसे कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने हमें सिखलाया है और जैसे कि जयंती के लिए रोम आई युवाओं ने हमें बहुत खूबसूरती से इसका साक्ष्य दिया। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग दूत संवाद प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा,
Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
हम युद्ध की समाप्ति हेतु प्रार्थना करना जारी रखें। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की 80वीं वर्षगांठ ने दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाने के बदले युद्ध की परिस्थिति को पुनः जागृत कर दिया है। निर्णयकर्ताओं को हमेशा अपने निर्णयों के परिणामों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों के अलावे शांति की सार्वभौमिक इच्छा को नजरअंदाज न करें। इस संबंध में संत पापा ने आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुझे आशा है कि यह आयोजन दक्षिणी काकेशस में स्थिरता और स्थायी शांति में योगदान देगा। उन्होंने हैती की गिरती निरंतर स्थिति पर चिंतन व्यक्त की, जहां से हत्याएं, विभिन्न तरह की हिंसा, मानव तस्करी, जबरन निर्वासन और अपहरण की खबरें बार बार आ रही हैं। मैं बंधकों की तत्काल रिहाई के लिए जिम्मेदार सभी लोगों से अपील करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ठोस समर्थन की मांग करता हूं, ताकि ऐसी सामाजिक और संस्थागत परिस्थितियां बनाई जा सकें जो हैती वासियों को शांति से जीवन यापन करने में मददगार हो। इसके उपरांत संत पापा लियो ने इटली, रोम के विभिन्न धर्म प्रांतों और विभिन्न देशों, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड से आए हुए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन किया। इसके उपरांत संत पापा ने सबों की उपस्थिति और प्रार्थना के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और सबों को रविवार ये शुभ कामनाएं अर्पित करते हुए सबों से विदा ली।
Grazie a tutti voi per la vostra presenza e la vostra preghiera. Buona domenica.
प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु गाओ सदा गुणगान।
प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु गाओ सदा गुणगान।
प्रेम
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने रविवार या देवदूत प्रार्थना हेतु संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों से रविवार या धर्म विधि के लिए चयनित संत लूकस के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करने को आमंत्रित करते हुए कहा कि हम जीवन रूपी धन का सही उपयोग करें। अपने धन द्वारा दूसरों की मदद करने का कोई अवसर अपने हाथ से जाने न दें। इसी के मद्देनजर संत पापा ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर दो संदेश लिखा। आज के सुसमाचार में यीशु हमसे आग्रह करते हैं कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उनका उदारता पूर्वक दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें, खासकर उन लोगों की जिन्हें हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, हम जहाँ भी हों प्रेम करने का कोई भी अवसर न गंवाएं। यही वह सतर्कता है जिसकी यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं। एक दूसरे के प्रति सचेत, उपलब्ध और संवेदनशील रहने की आदत डालें, क्योंकि वे हर पल हमारे साथ रहते हैं। देवदूत प्रार्थना के बाद संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय निर्णयकर्ताओं से संघर्षों के समाधान की जिम्मेदारी लेने की हार्दिक अपील की। उन्होंने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नए शांति समझौते पर संतोष व्यक्त किया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने एक्स में लिखा, आइए हम सभी युद्धों के अंत के लिए प्रार्थना करते रहें। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की 80वीं वर्षगांठ ने दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने के एक साधन के रूप में युद्ध के उचित अस्वीकृति की भावना को फिर से जागृत किया है। निर्णय लेने वाले हमेशा यह ध्यान रखें कि वे सभी लोगों के लिए लिए गए अपने निर्णयों के परिणामों के जिम्मेदार हैं। वे सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों और शांति की सार्वभौमिक इच्छा को नजरअंदाज न करें। अपने चौथे संदेश में संत पापा ने हैती में जारी हिंसा के लिए गहरा दुख व्यक्त किया। संदेश में संत पापा ने लिखा, हैती के लोगों की स्थिति लगातार निराशाजनक होती जा रही है। हत्या, हर तरह की हिंसा, मानव तस्करी, जबरन निर्वासन और अपहरण की खबरें लगातार आ रही है। मैं सभी जिम्मेदार लोगों से बंधकों को रिहा करने की हार्दिक अपील करता हूं और मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसे सामाजिक और संस्थागत हालात बनाने में ठोस सहयोग का अनुरोध करता हूं, जिससे हैती के लोग शांति में रह सकें। और हैती के धर्माध्यक्षों ने देवदूत प्रार्थना के दौरान हैती के संबंध में संत पापा लियो 14वें के शब्दों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पोर्ट ऑफ प्रिंस के महाधर्माध्यक्ष मैक्स लेराय मेसीडोर ने हैती के संबंध में संत पापा लियो 14वें के शब्दों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह अपील कठिनाई में फंसे लोगों, अन्याय, युद्ध और हिंसा के शिकार लोगों के प्रति संत पापा लियो 14वें की चिंता को व्यक्त करती है। संत पापा लियो हैती की कलीसिया की आवाज को दोहराते हैं, जो लगातार हिंसा को समाप्त करने और परिवारों में दुख फैलाने वालों और किसी न किसी रूप में उनका समर्थन करने वालों के बीच जागरूकता लाने का आह्वान करती है। वास्तव में हैती की कलीसिया इस बात पर गौर करती है कि हमारे देश में अपराध की अब कोई सीमा नहीं है। केसकॉफ स्थित संत हेलेन अनाथालय के एक बच्चे सहित 8 लोगों का अपहरण इसका प्रमाण है। यह बर्बर कृत्य उस राज्य और समाज की विफलता के कई संकेतों में से एक है, जो जीवन और मानवीय गरिमा के अर्थ को भूल रहा है। संत पापा की पुकार सबसे पहले हैती वासियों के दिलों में गूंजनी चाहिए, क्योंकि देश को एक साझा परियोजना के साथ संगठित करना और अहिंसा एवं न्याय के संवाद को बढ़ावा देना हमारी पहली जिम्मेदारी है। महाधर्माध्यक्ष मैक्स ने कहा, संत पापा लियो को मेरा हार्दिक धन्यवाद। आइए हम उनकी प्रार्थनाओं में शामिल हों कि ईश्वर हैती के लोगों को उन सभी बंधनों से मुक्त होने में मदद करें जो उनके विकास में बाधा डालते हैं। उधर यूनिसेफ द्वारा गाजा में अकेले जुलाई महीने में 12,000 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है। फरवरी में 2,000 बच्चे प्रभावित थे, जून तक यह आंकड़ा 3 गुना हो गया और अब यह 2 गुना हो गया है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बच्चों की जान गंभीर खतरे में है और इसके लिए तत्काल बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। गाजा में भीषण गर्मी इस क्षेत्र में अकाल और भूखमरी को और बढ़ा रही है। गाजा में नागरिकों की स्थिति बदतर होती जा रही है, क्योंकि क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। गाजा में पहुंच रही सहायता आवश्यकता बहुत कम है और राहत अभियानों में लगातार देरी हो रही है। उधर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने के इजरायल के फैसले पर चिंता व्यक्त की। एक बयान में उनके प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम एक खतरनाक वृद्धि का संकेत है, जो संकट को और गहरा कर रहा है और शेष बंधकों सहित लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि इस फैसले से और अधिक विस्थापन, मौतें और विनाश हो सकता है, इससे गाजा की आबादी की पीड़ा और बढ़ जाएगी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान ने व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य दशकों से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करना है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और विवादित क्षेत्र काराबाख से 1,00,000 से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों को निष्कासित किया गया था। लगभग 4 दशकों तक आर्मेनिया और अजरबैजान काराबाख क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते रहे। अजरबैजान ने 2023 में एक हमले में पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे 1,00,000 से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई शुरुआत की बात करते हुए दोनों पक्षों को एक साथ लाया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।